samadhan. 60% of men at one point indulge in extramarital affairs. And approximately, survey ye kehta hai, approximately 80% of the marriages are affected by infidelity. तो ये जो सर्वे हैं मित्रों सचमुच चौंकाने वाले हैं. खुदा ना करे कि ऐसा हो, सर्वे पूरी पूरी तरह से सही हो, क्योंकि जहां कहीं पे भी धोखे की बात आती है, जहां कहीं पे भी बाहर व्यक्ति देखना शुरू करता है और हमारी साथी को ये बात ज्ञात होती है, दिल भी टूटता है, रिश्ते भी टूटते हैं. और हम नहीं चाहते कि रिश्ते टूटें, परिवार एक रहें, आपस का प्यार बना रहे. इसीलिए आज भी इस विषय को मैं भ्राता जी के साथ चर्चा में लेना चाहूंगा. आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं. भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है.
थैंक यू.
भ्राता जी हम परिवार की बात कर रहे थे, पति पत्नी के संबंध की बात कर रहे थे और ये सर्वे मेरे हाथ आया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत तेजी से हम कहां जा रहे हैं. सर्वे सच ना हो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप इस पूरी स्थिति पे, इस सर्वे पे क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, सर्वे तो सत्य ही हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा हाल है. मुझे ये बात सुन के श्रीमद् भगवत गीता का वो सुंदर और गुह्य महावाक्य याद आया, जिसमें उन्होंने कहा है अर्जुन, काम क्रोध लोभ ये तीनों नर्क के द्वार हैं. साथ में ये भी कहा, काम मनुष्य का महावैरी है. और ये भी कहा, काम ही सभी पापों का मूल है. बहुत गुह्य बात है. लोग क्योंकि ना आज गीता पढ़ते न सुनते, जैसा कि सब जानते हैं कि गीता को पढ़ने नहीं देंगे माँ बाप अपने बच्चों को. इवन कई आचार्य भी मना करेंगे कि तुम सन्यासी बन जाओगे. गलत मान्यताएं आ गई हैं. दो चार लोग सन्यासी बन गए इसका मतलब सब सन्यासी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं. लोग अब से 30-40 साल पहले हमसे पूछते थे कि काम महाशत्रु कैसे, आज प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं. इस काम वासना ने रिश्तों को बिगाड़ा है. रिश्तों को नहीं, हमारे देश को बदनाम किया है. रेप के केस होते हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, साध्वी से, नन से. तो बड़ी लज्जा की बात है ना. ये बड़े महापाप है, महावैरी है, जो हमारी कल्चर पर एक बुरा आघात कर रहे हैं. और आज तो सबको मानना ही पड़ेगा. बिल्कुल सत्य है, ये परसेंटेज कम दी, मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा परसेंटेज नर और नारी की इस काम वासना के अधीन होकर इधर उधर देखती है. नर नारी, बड़े तो छोटो, छोटे बच्चे. मैं तो ये कहूंगा आज 10-12-14 साल की आयु के बाद इस वासना को युवक कंट्रोल नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं. इससे पतन हो रहा है, न केवल चारित्रिक पतन, इससे बौद्धिक पतन हो रहा है, इससे अध्यात्मता का ह्रास हो रहा है. और ये एक विनाश की ओर मनुष्य को ले चल रही है. लोग उस विनाश की बात करते हैं जो एटम बम से होगा. होगा या नहीं होगा इसकी बात हम पीछे करें, पर कोई भी कल्चर जब चरित्रहीन हो जाए, जब उसने काम वासना प्रबल रूप ले ले, जब उसमें मानवता नष्ट होने लगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो कल्चर भी समाप्त होने के कगार पर आई है. तो अगर इस चीज को हम समाप्त करना चाहते हैं तो अब हमें भगवान की वो आज्ञा माननी पड़ेगी. मैं कल जरा सी टीवी खोली देख रहा था कि स्वामी रामदेव जी गुरुकुल ऐसा खोल रहे हैं कि उसमें वो बच्चे आए जिनके माँ बाप अपने लड़के या लड़की को ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनाना चाहते हैं, जो देश के काम आए. कितना सुंदर विजन है. भगवान ने तो ये विजन बहुत पहले से दिया है. और हमारे पास तो कितने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी इकट्ठे हो गए हैं जो देश के काम आ रहे हैं. ये बड़ी सूक्ष्म सेवा अपने इस महान देश की है. लोग वैसी सेवा करते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई सफाई करता है, कोई और कुछ अच्छे काम करता है, ठीक है, वो भी अच्छी सेवाएं हैं. लेकिन इस देश को, इस भारत भूमि को, हमारे धर्मों को अब पावर ऑफ प्योरिटी की परम आवश्यकता है. तो निकलना होगा इस वासना से. अगर मनुष्य को, मानवता को जिंदा रखना है, अगर उसे इस सभ्यता को बचाना है, तो उसे काम वासना से ऊपर उठना ही होगा. तो ये सत्य आंकड़े हैं. इन्हीं के कारण घर घर में क्लेह है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष को पता लग जाता है उसकी स्त्री का, स्त्री को पता लग जाता है अपने पुरुष का, और तब बस क्या कहें, संबंधों में खाओस और विस्फोट, यद्यपि वो भी जा रहा होगा कहीं वो भी, लेकिन एक दूसरे को वो ऐसा देखना नहीं चाहते। खुद भले ही एक चरित्रहीन हो पर दूसरे को चरित्रवान देखना चाहता है, तो हमें समझदारी का परिचय देना होगा।
मैंने ये आंकड़े देखे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, एकाएक विश्वास नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग रही है। हम अपने देश पे इतना गर्व करते हैं, अपनी संस्कृति पे इतना गर्व करते हैं, और डंके की चोट पे हम अपनी पवित्रता की, अभी पिछले 4-5 एपिसोड पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी की बात, आपने शिवाजी महाराज की बात कही थी, और हमारे यहाँ चरित्र को सबसे ज्यादा मूल्य दिया गया है। लेकिन ये आंकड़े हमारे देश में देखे जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था, व्यक्तिगत मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आंकड़े क्या मेट्रोज के हैं, बड़े शहरों के हैं? जो मुझे लग रहा था शायद छोटे कस्बों में, गांवों में स्थितियां हमारी ऐसी नहीं है, वहां अब भी चरित्र का वही स्थान है, इस पे आप क्या कहेंगे?
थोड़ा सा गांवों में अच्छी स्थिति रहती है, क्योंकि लोगों को ऐसे मौके नहीं मिलते, उनके वहां खुला सब कुछ नहीं होता, मर्यादाओं के बंधन अभी भी ज्यादा हैं, कंपेरेटिवली कम है, लेकिन गांव में भी है, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई ना, इसने दूषितता को बहुत फैला दिया है, और ये जो हमारी एजुकेशन बहुत बढ़ी है, को एजुकेशन, यद्यपि ये बहुत अच्छी चीज थी, जिन्होंने इसको शुरू किया बहुत अच्छे इंटेंशन से शुरू किया था, पर इसने वासनाओं को बहुत बढ़ा दिया। इसमें किसी का दोष नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन हमें इस प्रभाव से ऊपर उठना ही पड़ेगा।
जी जी दादा जी, आपने कहा अब ये कलयुग का प्रभाव है, अब ये वासनाएं जोर ले रही हैं, आपने कहा बच्चों पे भी ये इफेक्ट देखने में आ रहा है, तो रेमेडी क्या है, करें क्या, कैसे स्थिति को सुधारा जाए, क्योंकि ये कह के छोड़ा भी तो नहीं जा सकता कि कलयुग का प्रभाव है।
हमें तो कॉलेजों के लेक्चरर और प्रोफेसर बताते हैं जो स्थिति कॉलेजों में थी, मतलब ग्रेजुएट या उसके बाद के बच्चे, वो स्थिति 9th से आ गई है, बच्चों में पैदा हो गई है, और वहाँ साफ पता चलता है कि इनमें वासनाएं बहुत फोर्स से काम कर रही हैं। इसलिए इसकी रिमेडी है, भगवान इस समय इस धरा पर अवतरित हुए हैं, और वो संदेश लेकर अवतरित हुए हैं कि तुम जब इस संसार में आई थी आत्माएं, तो तुम संपूर्ण पावन थे, अभी वापिस जाने का समय आ गया, क्योंकि कलयुग के बाद खेल ये समाप्त होगा और पुनः हम सतयुगी देवी दुनिया में प्रवेश करेंगे, तो फिर से पवित्र बनो, ये परमात्मा का संदेश। और पवित्र बनने के लिए राजयोग की शिक्षा उन्होंने दी, क्योंकि कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपनी वासनाओं पे कंट्रोल करना, ये मनुष्य के मन की शक्तियों से बाहर की चीज हो गई है। आजकल मनुष्य का मन अधीन हो गया है वासनाओं के, जबकि हमें वासनाओं को अधीन करना था। तो राजयोग के बल से, यानी परमात्म शक्तियां जब हम प्राप्त करते हैं, ये राजयोग का बल है, इससे मन सशक्त होता है और इन वासनाओं को कंट्रोल करने की ताकत आती है। तो हमारे यहाँ जो लाखों लोग आ रहे हैं, युवक बहुत आ रहे हैं, उनमें से जो लोग अच्छा योग अभ्यास कर रहे हैं, वो इन वासनाओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, और ये पवित्रता फिर एक आनंद बन जाती है। इस अध्यात्म की, इस समाज को, इस संसार को सिखाने की बहुत जरूरत है, जिसकी चर्चा हम रोज करते हैं। ये मिसिंग लिंक है हमारे इस एजुकेशन में, हमारे विकास में, कि विकास बहुत हुआ है, एजुकेशन बहुत बढ़ी है, धन बहुत बढ़ा है, मनुष्य की बुद्धि बहुत तीव्र हुई है, लेकिन उस सुख को मनुष्य ले नहीं पा रहा है। जैसा आपने कहा कि रिश्तों का भी अगर उनमें अनुभूति न हो तो वो रिश्ते बेकार होते हैं। तो ये रिश्तों के सुखों का, रिश्तों के प्रेम का, रिश्तों में पवित्रता का और अपनेपन का मनुष्य अनुभव इसलिए नहीं कर रहा कि अध्यात्म छूट गया पीछे। तो विकास तो हुआ लेकिन अध्यात्म छूट गया। जैसे किसी ने गेहूं बोए हों, दालें बोई हों, बहुत अच्छी फसल पैदा हुई हो, किसान ने अपने घर में भी रख लिया हो, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया हो तुमको हजम नहीं होगा, तुम खा नहीं सकते, दाल भी बहुत भारी है और गेहूं भी तुम्हें बहुत भारी है, तुम्हें तो पतली दाल और चने की रोटी उसमें चूर के पी लेनी होगी। ये स्थिति हो गई मनुष्य की कि धन संपन्नता बहुत हो गई लेकिन उसका सुख नहीं ले पा रहे। इस अध्यात्म को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, जो अगर बुद्धिमान मनुष्य इस चीज को नहीं समझ पाए आज कि अध्यात्म अध्यात्म क्या होता है, तो सचमुच ये सभ्यता समाप्त हो जाएगी।
मतलब ब्रदर जी, ये कहा जाए कि छोटे बच्चों को भी बचपन से आध्यात्मिक बातें सिखाई जाएं, पढ़ाई जाएं, सिलेबस में शामिल हो जाए तो दी बेस्ट, और साथ ही जो भी है परिवार में है, गृहस्थ में है, वहां पे भी अध्यात्म को शामिल करना ही होगा, इसके बिना और कोई चारा नहीं है। लेकिन ब्रदर जी, अध्यात्म की ओर वो रुझान भी तो पैदा नहीं हो रही है लोगों में। वो सोचते हैं अध्यात्म मतलब क्या है, ये धर्म वर्म सब या तो बेकार की चीजें हैं या हमारे काम की चीजें नहीं है।
लेकिन एक दूसरी चीज तेजी से बढ़ रही है। अभी मैं कहीं से आया, चार लोग फटाफट मेरे पास आ गए, सबका एक ही केस जिसकी चर्चा हम पहले भी कराए हैं कि मेरी बच्ची बहुत होशियार थी, अब पढ़ नहीं रही है। मेरा लड़का पढ़ने में बहुत रुचि रखता था, खेल कूद में भी नहीं जाता था, टीवी भी नहीं देखता था, अचानक उसको पढ़ाई से वैराग आ गया है। तो ये अब एक आध साल में ही मनुष्य को ये समझ में आ जाएगा कि जिन चीजों में तुम आनंद ले रहे हो वो असली आनंद नहीं है, वो टेम्परेरी आनंद है, और तुम उसकी ओर खींचे चले जा रहे हो। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट हो और बाजार में रसगुल्ले बहुत अच्छे और बड़े टेस्टी, उनकी खुशबू सुगंध भी उसको आ रही हो, और वो सोचे इसमें तो बहुत आनंद है, ये छोड़ो डायबिटीज वायबिटीज का चक्कर, मुझे तो इनका आनंद लेना है, तो आनंद तो ले लेगा, लेकिन लंबे काल के लिए वो आनंद उसका समाप्त हो सकता है। ठीक यही बात इस अध्यात्म और भौतिकता के लिए है कि मनुष्य आनंद तो ले रहा है, मैं युवकों की क्यों बात करूं, बड़े भी उसका आनंद तो ले रहे हैं भोग विलास का, लेकिन अपने एक असली आनंद से दूर होते जा रहे। और मैं बिल्कुल ये सत्य कह रहा हूँ, अनुभवों से जो संसार की स्थिति देखने में आ रही है, एक दो तीन साल अधिक से अधिक लगेंगे। मनुष्य को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर जीवित रहना है, अगर खुश रहना है, अगर संबंधों का सुख लेना है, तो अध्यात्म के पथ पर चलने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। जब आप कह रहे थे यहाँ आनंद आ रहा है, तो मैं कहूंगा यहाँ आनंद आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में, ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में। सचमुच अनेक युवक और मनुष्य बड़े आकर ये महसूस करते हैं कि दिस इज द रियल वे ऑफ लिविंग, क्योंकि जिस तरह मनुष्य जी रहा है वो संबंधों में खटास देख रहा है, पति पत्नी आपस में बात ही नहीं कर रहे, भाई भाई में शत्रुता होती जा रही, कहीं बाप और बच्चे के बीच बहुत दूरी बढ़ती जा रही है। जब वो ज्ञान मार्ग पे आते हैं तो उन्हें लगता है कि बस यहाँ से हम ठीक हो गए, सच्चा मार्ग मिल गया। पहले भी हम एक बात की चर्चा कर रहे थे कि अध्यात्म को लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है।
जी, जी।
जैसे कल हम सुन रहे थे कि बॉम्बे में वहाँ की जो कॉरपोरेशन है उसने अपने स्कूल्स में गीता अनिवार्य की है, गीता पढ़े। लेकिन बात ये है, अनिवार्य तो कर दी, तो गीता पढ़ाने वाले कहीं ऐसे तो नहीं वो कि श्लोक सुना दिया, उसका अर्थ भी कर दिया, लेकिन उसका अर्थ उन्हें भी नहीं आता, बच्चों ने रट लिया और सुना दिया, इससे काम नहीं चलेगा। हमारा कम्युनिकेशन इतना सिंपल हो कि जिसको हम कुछ बात कह रहे हैं वो उसको उपयोगी लगे, वो उसको समझ सके, वो उसको अपने जीवन में ला सके, तो लोग क्या करते हैं या गीता के विद्वान क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम गीता के बहुत बड़े विद्वान हैं, हम सारी गीता कंठस्थ है, वो गीता के बड़े बड़े श्लोक सुनाएंगे, फिर उनकी जो लैंग्वेज थोड़ी गीता की क्लिष्ट है, साहित्यिक है, उसका अर्थ करेंगे, और अगर उनको कोई कहे कि इसकी व्याख्या भी कर दो ताकि ये बच्चे समझ सकें, तो शायद वो उनको भी नहीं आता है। गीता को बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है। दूसरे अध्याय में आत्मा की चर्चा है। मनुष्य को रियलाइज किया जा सकता है कि तुम आत्माएं हो, तुम कौन हो, तुम्हारे पास क्या शक्तियां, बिल्कुल सिंपल 15 मिनट में सारा समझाया जा सकता है। लेकिन अगर गीता के उन क्लिष्ट श्लोकों को उनके सामने रख दिया जाए तो विद्यार्थियों को लगेगा अरे क्या बवाल आ पड़ा, और मुसीबत आ गई, पहले ही भारी हो रहे थे हम तो। इसलिए अध्यात्म में रुचि नहीं
की जरूरत है।
रुचि न रहने का कारण ये है कि उसको क्लिष्ट बना दिया गया, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। आवश्यकता इस चीज की होगी कि उसको सरल स्वरूप दिया जाए ताकि समाज का हर व्यक्ति, हर बुद्धिमान व्यक्ति, साधारण विवेक वाला व्यक्ति उसको बहुत आराम से स्वीकार करे।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस अध्यात्म को बहुत सरल करना होगा, रुचिकर बनाना होगा और लोगों के जीवन तक पहुंचाना होगा, तभी वो वहां से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि बात बिल्कुल पते की है व्रता जी, क्योंकि यदि अध्यात्म में आनंद नहीं दिख रहा है या आ नहीं रहा है, तब तक वो इसकी ओर आकर्षित क्यों होंगे। जब सहज, वो कहते भी हैं शॉर्टकट आजकल हर एक व्यक्ति अपनाता है, शॉर्टकट में मुझे यहाँ थोड़ी देर आनंद मिल रहा है तो क्यों ना मैं यहाँ ले लूँ, वहाँ जाने की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा महसूस करता है।
मैंने देखा, हम लोग बचपन से मैंने दर्शन पढ़ने शुरू कर दिए, इंडियन फिलोसॉफी बड़ी भारी लगी, लगाया ड्राई सब्जेक्ट है। किसी का सुनते थे फलाने बच्चे ने फिलोसॉफी का सब्जेक्ट लिया है बीए में, फिर एमए वो फिलोसॉफी से करेगा, बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है।
वो जो फिलोसॉफी लेके पढ़ते हाँ। थे वो भी बड़े गंभीर
हाँ,
गंभीर
से। हम ब्रह्मा कुमारी में आए तो लगा फिलोसॉफी, अरे तो आनंद है इसमें, तो ये तो सबसे सुंदर सब्जेक्ट है। तो ये वही चीज है कि किस चीज को हम किस तरह पुटअप कर रहे हैं, किस तरह परोस रहे हैं। बस ये अगर मनुष्य सीख लेगा तो हमारी नई पीढ़ी अध्यात्म को स्वीकार करेगी और वो उसको जीवन का या अपनी एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट अंग मानेगी, कि जैसे विकास के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम रात दिन पढ़ेंगे, ट्यूशन करेंगे, वैसे ही अच्छी सफलता के लिए हम अध्यात्म के पथ पर भी चलेंगे।
बिल्कुल, चलिए बेटा जी, हमारी पूरी वो क्या कहें, मैं तो आशा भरी नजरों से देखता हूँ और अच्छा लगता है कि हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी अध्यात्म की ओर चल पड़े और इसे अच्छी तरह से समझे, क्योंकि यही जीवन जीने की कला है, शायद इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। एक बात ब्रदर जी, जो आपने कही सर्वे में जो बात थी, उसमें से एक बात थी कि व्यक्ति इसलिए बाहर देखने लगता है क्योंकि वो थोड़े समय के बाद बोर महसूस करने लगता है। ये भी एक नई बात लगी कि बोर्डम, कि मैं अपने साथी के साथ बोर हो गया या मुझे कुछ नवीनता चाहिए, तो ये वाले भाव भी पनप रहे हैं, तो इसलिए भी व्यक्ति कहीं और देखने लगता है।
इन सब के कारण यही है कि मनुष्य के अंदर वासनाएं बहुत बढ़ रही हैं। उसके जिम्मेदार हमारा भोजन भी है। अभी नॉन वेज संसार में बहुत बढ़ गया है, ड्रिंकिंग करना, इसको लोग फैशन मानने लगे। और नॉन वेज, जब तक वो नॉन वेज न खाए, लोग कहेंगे तुम भी क्या आदमी हो यार, पुराने जमाने में जी रहे हो। उन्हें पता नहीं कि इन सब से ये काम वासना बढ़ रही है। वो आनंद तो ले लेते हैं उसका, उनको अच्छा तो लगता है, वो कहते हैं हमें एनर्जी चाहिए, हमें से एनर्जी, ठीक है एनर्जी तो मिल जाएगी, पर काम वासना बहुत बढ़ जाती है, जो उनको कहीं ना कहीं फिर, बहुतों को तो देखो जेलों में बंद कर दिया इस वासना ने, अभी वो वासना का क्या करेंगे। बड़े बड़े साधु संत भी आज जेलों में बंद हो गए। तो आखिर ये पतन का कारण ही है, हमें मूल रूप से अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान कर कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये वासनाएं तो बाहर की चीज है जो हम में आ गई थी, इसके वेग को हमें रोकना होगा, ये बहुत आवश्यकता है। अन्यथा दबाव से इसको वश नहीं किया जा सकता, दबाव से तो इसमें विस्फोट पैदा हो जाएगा। जी, 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 जी। तो ये इसीलिए हो रहा है कि ये वासनाएं बढ़ रही हैं, तो अध्यात्म इसमें इसी तरह मदद करेगा कि जैसे जैसे मनुष्य को ये फीलिंग होगी मैं आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, तो उसके प्योर संस्कार जागृत होंगे और ये जो वासनाओं में अति वेग से वृद्धि हो रही है ये कहीं ढीली पड़ जाएगी, इसका फोर्स खत्म होने लगेगा और तब इसकी स्थिति सुधरेगी।
पता जी, ये जो बाहरी वातावरण है वो भी कई बार बहुत ज्यादा हावी हो जाती है व्यक्ति के ऊपर, संगी साथियों का प्रभाव हावी हो जाता है और कुछ नहीं भी है। कई बार कहते भी है ना कि कोई संत टाइप का भी व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है जिस स्थान के वाइब्रेशन ठीक नहीं है, तो उसके मन में भी विकृति आने लगती है। तो यहाँ पे भी विशेष क्या किया जाए, यदि चारों तरफ ऐसा ही ऐसा है, मैं अकेले लड़ नहीं पा रहा।
हमारी स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत अच्छे अच्छे इसके समाधान सुझाए हैं और हम ये बात सबको सिखाते ही आ रहे हैं कि आप अच्छे स्वमान में रहो तो आपके वाइब्रेशंस दूसरों को जाएंगे। जैसे एक अगरबत्ती है, अभी बदबू है, बदबू बहुत बुरी है, लेकिन अगरबत्ती जला दी गई, एक जला दी गई, वो कोई बहुत सुगंधित अगरबत्ती जला दी गई तो उस बदबू को वो समाप्त कर देती है ना। ऐसे ये जो चारों निगेटिव वाइब्रेशंस की, वासनाओं की वाइब्रेशंस की गंदगी है, हम अगर स्वमान में रहते हैं तो एक तो हमारे चारों ओर पावरफुल ओरा बनता है, इस ओरा से ये वाइब्रेशंस टकराकर वापस चले जाते हैं, दूसरे हमारे वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। देखिए जैसे आज भी कलयुग के अंत में भी बहुत सारे मंदिर ऐसे अच्छे हैं, बहुत सारे क्या मैं कहूंगा जितने भी अच्छे देवी देवताओं के मंदिर हैं कि वहां जाकर मनुष्य का चित्त कुछ समय के लिए तो शांत और पवित्र हो ही जाता है ना
जी।
हमारे यहाँ भी पहाड़ियों में कई मंदिर हैं, हम भी चले जाते हैं, देखते हैं देवी बहुत सुंदर, एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव उसको बनाया गया है और लोग वहां जाके नतमस्तक होकर बैठते हैं, उनका चित्त थोड़े समय के लिए ही सही पर शुद्ध अवश्य हो जाता है। तो यदि कलयुग में मूर्तियों के द्वारा भी ऐसे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं तो अगर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा तो इन नेगेटिव वाइब्रेशंस का उस पर असर नहीं होगा बल्कि उसका असर इन सब पे होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने आप को थोड़ा सा ऐसे स्पिरिचुअली एम्पावर करने की आवश्यकता होगी होगी ताकि हम वाइब्रेशन के थ्रू ये कर पाए। एक और रीजन विशेष करके लोग फोन कॉल के द्वारा भी जब कभी चर्चा होती है तो दादाजी बताते हैं कि जो सामने वाले हमारे साथी हैं वो अब हम पे अटेंशन नहीं देते या अब उनका हमसे वैसा प्यार नहीं रहा है या फिर वो अपने आप में ही अपने बिजनेस में अपने कार्यों में उनका जो शेड्यूल है बहुत हेक्टिक है, बहुत बिजी हो गए हैं। तो अब चूंकि हमें वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो अपने में बिजी हो गए हैं तो हमारा ध्यान कहीं और जाता है।
एक व्यक्ति मान लो पुरुष है, अब उसका ध्यान अपने बिजनेस और भिन्न भिन्न कार्यों की सफलता में लग गया तो उसकी जो एनर्जी है वो सारी उस तरफ यूज होने लगी और जब किसी मनुष्य के साथ ऐसा होने लगता है तो उसकी वासनाएं भी मंद पड़ जाती हैं। अब जो व्यक्ति घर में रह रहा है उसको वही चिंतन है, वो दूसरों को देखती है, को लगता है देखा उनके घर में तो इतना अच्छा, हमारे पति तो बस काम धंधे में लगे हुए
ध्यान
नहीं देते, उसकी वासनाएं बढ़ती रहती हैं, तब वो इधर उधर देखते हैं। लेकिन इसमें भी मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति अपनी एनर्जी का सदुपयोग कर रहा है, इनको भी अपनी एनर्जी का सदुपयोग कर लेना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन बच्चों को पढ़ाना, घर के कामकाज खुद कर लेना, इसमें क्या होता है कईयों के घरों में नौकर हैं, सारा कामकाज वो कर रहे हैं, ये खाली हैं, बैठ के टीवी देख रहे हैं, नेट खोला हुआ है, तो इनकी वो वासनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसमें मनुष्य को अपने घर का काम, अपने बच्चों पर ध्यान देना, उनको पढ़ाना, इसमें जितना वो ध्यान देंगे तो इन चीजों से वो मुक्त रहेंगे।
बिल्कुल। एक चीज और बता जी, मान लीजिए चलिए ये वाली एक बात रही कि पॉजिटिव अपने आप को ले लिया, लेकिन जब इन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो कहीं और हैं, कहीं उनका ध्यान इस प्रकार से किसी दूसरी महिला की ओर है, तो इनके अंदर एक रिवेंजफुल फीलिंग भी पैदा होती है कि जब वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों पीछे रहूं, तो फिर इनका भी ध्यान बाहर भटकने लगता है। यहाँ क्या सजेस्ट
करें? इसमें थोड़ा सा मनुष्य को समझदार होना चाहिए और हमारी मातृशक्ति को तो और समझदार होना चाहिए कि अगर एक गड्ढे में गिर रहा है तो मुझे गड्ढे में नहीं गिरना है, मुझे एक श्रेष्ठ चरित्र का ऐसा एग्जाम्पल दिखाना है ताकि दूसरा व्यक्ति भी गलत मार्ग से सही मार्ग पर आ जाए। ये सोचने से तो समाज का पूरी तरह पतन हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति को और विशेषकर मातृशक्ति को बहुत समझदार, बहुत चरित्रवान होना चाहिए और उसे दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।
तो ये टिट फॉर टैट वाली नीति नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन व्यक्ति कई बार गुस्से में ऐसे कदम उठा लेता है या दहलीज से उसके कदम बाहर निकलने लगते हैं व्रत जी, और वो सोचता है कि जब सामने वाला, क्योंकि जब मैं भी तो समान हूँ वाली भावना,
बस यही जो मैंने कहा कि इस मार्ग से हटना होगा मनुष्य को और एक स्पिरिचुअलिटी पर आना होगा। हम भगवान के बच्चे हैं, दूसरे लोग अगर गलत मार्ग पे जा रहे हैं जैसे मैंने कहा, ताकि हम दूसरों को भी संभलने का मौका दे सके, एक व्यक्ति के गुड वाइब्रेशंस दूसरे को भी कहीं रियलाइज कराएंगे कि यू आर रॉन्ग, तो फाइनली हम अपने स्वरूप को पहचाने, अपना नाता अपने परम पिता से जोड़े जो परम पवित्र है, जिसे पवित्रता प्रिय है, और ये पवित्रता में ही सच्चा सुख है। ये वासनाओं का सुख तो क्षणिक है, बस इतनी देर रहता है फिर ये दुख में बदल जाता है, इससे हम मुक्त हों और अपने सत्य मार्ग पर अग्रसर हों।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी प्रकाश के लिए। लेकिन एक प्रश्न मन में रह ही गया है जो आगे मैं चर्चा में लूंगा। कई बार नारियां ये सोचती हैं कि हमें ही क्यों कहा जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं कहा जाता, ये उनके मन में द्वंद रहता है, प्रश्न रहता है। कल मैं जरूर इस पे आपसे प्रकाश लेना चाहूंगा। आज के सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बात रिश्तों की हो रही है, परिवार की हो रही है और विशेष पति पत्नी के संबंध की बात हो रही है जो सदियों से चला ही आ रहा है। हम परिवार के बिना जीवन की या संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते और परिवार में जहां आपस में प्रेम होता है, सम्मान होता है, सहयोग होता है, वहाँ सचमुच परिवार परिवार लगता है और बड़ा ही आनंद आता है। हमें ये एक ललक रहती है या इच्छा रहती है, इंतजार होती है कि हम कब अपने घर जाएं। लेकिन बात जब ऐसी स्थितियों तक पहुंच जाती है तो वो घर बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और इसे हमें ठीक करना है। क्योंकि जिन आंकड़ों से आज मैंने शुरुआत की थी, बहुत ही भयावह आंकड़े थे, जो हम नहीं चाहेंगे, व्यक्तिगत मैं नहीं चाहूंगा, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि ये आंकड़े सचमुच ऐसे हों, ये आंकड़े पूरी तरह से खत्म हो और रिश्ते बहुत सुमधुर हों। यही प्रयास होना चाहिए। क्योंकि मित्रों, किसी ने कहा है कि रिश्ते वो नहीं होते जिसमें हम दूसरे के लिए जान देते हैं, रिश्ते वो भी नहीं होते जिसमें हम झूठे मान देते या लेते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो पानी में भी गिरे हुए आंसू को पहचान लेते हैं। इतनी गहराई होती है सच्चे रिश्ते में। और जहां बात पति पत्नी के संबंध की आती है, तो वो रिश्ता तो सचमुच इतना गहरा होता है जो इन आंसू को, अंदर की भावनाओं को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने वाली ही होती है। लेकिन शायद वो गहराई अब हम कहीं भूलते जा रहे हैं, ये गहराई कहीं छूटता चला जा रहा है। फिर से उस गहराई को उसी गहराई से, उसी शिद्दत से महसूस करने की आवश्यकता है। और इसमें अध्यात्म, जैसे भ्राता जी हमेशा कहते हैं, बहुत मददगार होगा। क्यों ना हम उस अध्यात्म को अपनाएं और इन रिश्तों को पुनः पुख्ता बनाएं, मजबूत बनाएं। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान।